लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पाप फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। बुधवारे आम दर्शन समारोह में संत पाप फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के सामने सद्गुणों पर अपनी धर्म शिक्षा माला जारी रखते हुए दृढ़ता के सद्गुण पर चिंतन किया। संत पापा ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi di oggi,
प्यारे भाइयों एवं बहनों सुप्रभात। आज की धर्म शिक्षा तीसरे प्रमुख सद्गुण अर्थात दृढ़ता के सद्गुण को समर्पित है। आइए हम कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा में दिए गए विवरण से शुरू करें।
La fortezza è la virtù morale.
दृढ़ता वह नैतिक सद्गुण है जो कठिनाइयों में दृढ़ता और अच्छाई की खोज में निरंतरता सुनिश्चित करता है। यह प्रलोभनों का विरोध करने और नैतिक जीवन में बाधाओं को दूर करने के संकल्प को मजबूत करता है।
La virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura.
दृढ़ता का सद्गुण व्यक्ति को भय, यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी विजय पाने और इम्तिहान एवं उत्पीड़न का सामना करने में सक्षम बनाता है। संत पापा ने कहा, कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा दृढ़ता के सद्गुण के बारे यही कहती है।
Ecco dunque la più combattiva delle virtù.
इस तरह यह सद्गुणों में सबसे अधिक जुझारू गुण है। यदि प्रमुख सद्गुणों में से पहला अर्थात विवेकशीलता सबसे पहले मनुष्य के विवेक से जुड़ा और न्याय ने इच्छा में अपना निवास पाया, तब यह तीसरा सद्गुण दृढ़ता अक्सर विद्वान लेखकों द्वारा उन चीजों से जोड़ा जाता है जिससे प्राचीन लोग चिड़चिड़ी भूख कहते हैं। प्राचीन सोच में एक व्यक्ति की कल्पना जुनून के बिना नहीं की जाती थी, या तो उससे एक पत्थर माना जाता था, और जुनून जरूरी नहीं है कि पाप का परिणाम हो, लेकिन उन्हें शिक्षित किया जाना, प्रेरित किया जाना, बपतिस्मा के जल से शुद्ध किया जाना या पौत्रात्मा की आग से बेहतर होना चाहिए। संत पापा ने कहा, एक ख्रिस्त जो बिना साहस के, जो अपनी शक्ति को अच्छाई में नहीं बदलता, जो किसी की परवाह नहीं करता, वह बेकार ख्रिस्त है। हम इस पर गौर करें, यीशु कोई उदासीन और तपस्वी ईश्वर नहीं है जो मानवीय भावनाओं को नहीं जानते हों। इसके विपरीत वे अपने मित्र लाजरुस की मृत्यु पर रो पड़े और उनकी भावुक आत्मा उनकी कुछ अभिव्यक्तियों में स्पष्ट है, जैसे कि जब वे कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और चाहता हूँ कि वह धधक उठे, और मंदिर में खरीद बिक्री करने वालों के सामने वे बलपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इस तरह यीशु में भी जुनून है। संत पापा ने दृढ़ता की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा, आइए अब हम इस महत्वपूर्ण सद्गुण के अस्तित्वगत विवरण देखें जो हमें जीवन में फलदायी बनने में मदद करता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों और ख्रिस्तीय धर्मशास्त्रों दोनों ने दृढ़ता के सद्गुण में दोहरे विकास को मान्यता दी थी, एक निष्क्रिय और दूसरा सक्रिय। पहला हमारे भीतर निर्देशित है, कुछ आंतरिक शत्रु हैं जिन्हें हमें हराना है, जिन्हें चिंता, पीड़ा, भय, अपराध बोध के नाम से जाना जाता है। वे सभी ताकतें हमारे अंतरतम में हलचल मचाती हैं और कभी कभी हमें पंगु बना देती हैं। कितने संघर्ष करने वाले संघर्ष शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें इन आंतरिक शत्रुओं का एहसास नहीं होता। दृढ़ता सबसे पहले और सबसे बढ़कर स्वयं पर जीत है, हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले अधिकांश डर अवास्तविक होते हैं और बिल्कुल भी सच नहीं होते। ऐसे समय में पवित्र आत्मा का आह्वान करना और धैर्यपूर्वक दृढ़ता के साथ हर चीज का सामना करना बेहतर है। एक समय में एक समस्या का हल करना चाहिए, जैसा कि हम सक्षम हैं, लेकिन अकेले नहीं, प्रभु हमारे साथ हैं। यदि हम उन पर भरोसा रखते हैं और ईमानदारी से अच्छाई की खोज करते हैं, तब हम हर परिस्थिति में हमारी रक्षा और कवच के लिए ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखेंगे। दूसरी गति पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा, इसके बाद दृढ़ता के सद्गुण की दूसरी गति है जो अधिक सक्रिय है। आंतरिक इम्तिहान के साथ साथ बाहरी शत्रु भी हैं, जो जीवन के इम्तिहान हैं, उत्पीड़न, कठिनाइयां, जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी और जो हमें आश्चर्यचकित करती हैं। दरअसल हम यह अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन काफी हद तक वास्तविकता असंभव घटनाओं से बनी होती है और इस समुद्र में कभी कभी हमारी नाव लहरों से इधर उधर हो जाती है। दृढ़ता हमें लचीला नाविक बनाती है, जो भयभीत या हतोत्साहित नहीं होते। दृढ़ता एक मौलिक सद्गुण है, क्योंकि यह दुनिया में बुराई की चुनौती को गंभीरता से लेता है। कुछ लोग दिखावा करते हैं कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कि मानवीय इच्छा कभी अंधी नहीं होती, कि मौत लाने वाली ताकतें इतिहास में छिपी नहीं रहती। लेकिन उन नीच कामों को जानने के लिए इतिहास की एक किताब या दुर्भाग्य से अकबरों को पढ़ना ही काफी है, जिनके कुछ हद तक हम भी शिकार हैं और कुछ हद तक अपराधी। युद्ध, हिंसा, गुलामी, गरीबों पर अत्याचार, ऐसे घाव हैं जो कभी नहीं भरे और आज भी उनसे खून बहना जारी है। दृढ़ता का सद्गुण हमें इन सब पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने और जोर से नहीं कहने के लिए प्रेरित करता है। हमारी आरामदायक पश्चिमी दुनिया में, जिसने हर चीज को कुछ हद तक कमजोर कर दिया है, जिसने पूर्णता की खोज को एक सरल जैविक विकास में बदल दिया है, जिसमें संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब कुछ एक जैसा दिखता है, हम कभी कभी नबियों के लिए एक स्वस्थ विषाद महसूस करते हैं। लेकिन विघटनकारी दूरदर्शी लोग बहुत कम होते हैं। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें उस नरम जगह से जगा सके जहां हम पड़े हैं और हमें बुराई एवं उदासीनता की ओर ले जाने वाली हर चीज के प्रति दृढ़ता के साथ नहीं दोहराने के लिए प्रेरित कर सके। संत पापा ने कहा, बुराई और उदासीनता को नहीं कहना, चलना को हाँ कहना। चलना जो प्रगति लाता है और इसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। इसलिए आइए हम सुसमाचार में यीशु की दृढ़ता को फिर से खोजें और इसे संतों के साक्ष्य से सीखें। इतना कहने के बाद संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की।
Mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli anziani, agli sposi novelli.
और इसके बाद उन्होंने युवाओं, बीमारों, बुजुर्गों और नवविवाहितों की याद की एवं सभी को पास्का की शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि पास्का की घोषणा की सांत्वना भरी रोशनी सभी के दिल में बढ़े, जो क्रूस पर चढ़ाए गए और पुनर्जीवित हुए यीशु में हमारे विश्वास और आशा को मजबूत करते और अंत में संत पापा ने सभी के साथ हे हमारे पिता प्रार्थना का पाठ किया और सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino hovicum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc lucet usque in saeculum.
Aiutorium nostro in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अंत में संत पापा फ्रांसिस ने संघर्षों के कारण पीड़ित लोगों को न भूलने की अपील की। संत पापा ने भारी बाढ़ से प्रभावित कजाकिस्तान की आबादी के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। बाढ़ ने पूरे शहरों को तबाह कर दिया और 96,000 से अधिक लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस प्राकृतिक आपदा के प्रभाव से पीड़ित हैं। आज भी हर बुधवार आमदर्शन समारोह की तरह संत पापा फ्रांसिस की ओर से संघर्षों की भयावहता और मौतों एवं हिंसा के बोझ से घायल क्षेत्रों के लिए दर्द की अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं हुई। वे यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल के साथ म्यांमार को भी जोड़ते हैं, जहां रोहिंग्या अल्पसंख्यकों को त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में इतालवी भाषी विश्वासियों का अभिवादन कर संत पापा ने कहा, मेरी संवेदनाएं पीड़ित यूक्रेन, फिलिस्तीन और इसराइल की ओर हैं। संत पापा की अपील ऐसे समय आई जब यूक्रेन में ड्रोन हमले जारी हैं और मृत नागरिकों और सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि गाजा से कुछ ही घंटों पहले एक इजरायली हवाई हमले की खबर आई, जिसमें शाम को पट्टी के केंद्र जवेदा शहर में एक घर पर हमला किया गया, जिसमें 7 महिलाओं और 4 बच्चों सहित कम से कम 11 लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के फुटेज में एक व्यक्ति को छोटी सी लड़की के निर्जीव शरीर को ले जाते हुए और अन्य मृत बच्चों के शवों के साथ पास के दीर अल बलाह में मुख्य अस्पताल के फर्श पर रखते हुए दिखाया गया है। संत पापा फ्रांसिस ने आग्रह किया, प्रभु हमें शांति दे, युद्ध हर जगह है। एक बार फिर उन्होंने कहा, आइए म्यांमार को न भूलें। अल्पसंख्यक रोहिंग्या आबादी के विशेष संदर्भ में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। संत पापा हमेशा अपनी प्रार्थनाओं और अपीलों में उन्हें शामिल करते हैं। फिडेस एजेंसी द्वारा दोबारा जारी की गई ताजा खबरों में बर्मी सेना द्वारा रोहिंग्या पुरुषों को जबरन भर्ती की बात की गई है, जो उन्हें रखाइन राज्य में अराकान सेना के साथ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति पर भेजती है। लगभग 1,000 युवाओं, मुख्य रूप से विस्थापित लोगों को गांवों, बाजारों, खेतों से अपहरण कर लिया गया और सैन्य प्रशिक्षण के लिए सेना के ठिकानों पर ले जाया गया। संत पापा जोर देकर कहते हैं, आइए हम उन भाइयों और बहनों को न भूलें जिन्हें इन युद्ध क्षेत्रों में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। आइए हम साथ मिलकर हमेशा शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद संत पापा ने दुनिया का ध्यान कजाकिस्तान की ओर आकर्षित किया, जो बर्फ की तेजी से पिघलने के कारण आई हिंसक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यह पिछले 70 वर्षों में सबसे भीषण बाढ़ है, जिसके कारण विशाल नदियां अपनी क्षमता सीमा से अधिक बढ़ गई हैं और लगभग 96,000 लोगों को घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। समारोह के अंत में फिर से संत पापा ने कजाक के लोगों के प्रति आध्यात्मिक निकटता व्यक्त की और सभी को उन सभी के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया जो इस प्राकृतिक आपदा के प्रभाव से पीड़ित हैं। कठिनाई के समय में भी हम पुनर्जीवित ईसा मसीह की खुशी को याद करते हैं और मैं आप पर और आपके परिवारों पर हमारे पिता परमेश्वर के दयालु प्रेम का आह्वान करता हूँ। उधर महीनों से व्हाइट हाउस के अध्यक्ष इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू पर गाजा में युद्ध के अपने प्रबंधन पर पुनर्विचार करने और युद्ध विराम पर पहुंचने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिससे अगले कुछ हफ्तों के लिए सभी भोजन और दवाओं को गाजा पट्टी में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके। युद्ध विराम कम से कम 6 सप्ताह का एक मानवीय ठहराव और आबादी के लिए दवाओं और भोजन की पट्टी में प्रवेश, यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायली सरकार से पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि वे प्रधानमंत्री नेतान्याहू की युद्ध नीति से पूरी तरह से असहमत हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है, इन जरूरतों को पूरा न करने के लिए कोई बहाना नहीं है। इस बीच विशेष रूप से आशंकित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इजरायल और अमेरिकी सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच कुछ हफ्तों में एक बैठक होने की उम्मीद है। इस बीच आज बुधवार 10 अप्रैल की रात को इसराइली हवाई हमले ने मध्य गाजा में नुसीरात शरणार्थी शिविर की एक इमारत पर हमला किया। छापे में 14 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। यह हमला ईद उल फितर से पहले की आखिरी रात को हुआ, जो इस्लामी कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण छुट्टियों में से एक है, जो रमजान के अंत का प्रतीक है। हमले के पीड़ितों को बचाने वाले डॉक्टरों की गवाही के अनुसार घायलों का अल अक्सा शहीद अस्पताल में भर्ती किया गया है, जो गंभीर स्थिति में है। उधर सहायता संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से सूडान में अकाल को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। सूडान और उसके पड़ोसी देशों में काम करने वाले मानवतावादी संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि सूडान अकाल के कगार पर है और सभी कार्यकर्ताओं से सैकड़ों हजारों लोगों को मौत से बचाने के लिए तुरंत प्रयास तेज करने का आग्रह कर रहे हैं। यह अपील 15 अप्रैल को फ्रांस, यूरोपीय संघ और जर्मनी द्वारा पेरिस में आयोजित होने वाले एक मानवीय सम्मेलन से पहले आई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा इतिहास में सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक, सबसे बड़ा भूख आपातकाल का समाधान निकालने में मदद की जाएगी। खाद्य संकट पिछले साल 15 अप्रैल को दो प्रतिद्वंदी जनरलों सूडानी नियमित सेना SAF के प्रमुख अब्देल फतह और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस अर्धसैनिक बलों का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद दगालो के बीच हुए संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस साल जनवरी की शुरुआत में जनरल दगालो द्वारा युद्ध विराम के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करने और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में शत्रुता समाप्त करने का आह्वान करने के बावजूद लड़ाई कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। संघर्ष के कारण 85 लाख से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं और 15 लाख पड़ोसी देशों में विस्थापित हो गए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।